पृष्ठ संख्या 116, अध्याय 17, कलात्मक प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण। प्रयोगशील कला का प्रस्तुतिकरण 100% कलापूर्ण नहीं होता। यह अपेक्षा भी नहीं है कि वह वैसा होना ही चाहिए। कला प्रस्तुतिकरण में कुछ अंश कला का तो कुछ शास्त्र का हुआ करता है। वादन के माध्यम से सुंदरता निर्माण करना कला का उद्देश्य होता है, और जिस कला से सौंदर्य पैदा नहीं होता उसे कलाहीन मानकर शास्त्र का प्रस्तुतिकरण समझना चाहिए। अलग अलग दृष्टिकोण से कहना हो तो वादन के दो अंग होते हैं, पहला कला और दूसरा कारीगरी, आर्ट एंड क्राफ्ट। कला में मौलिक ओरिजिनल सौंदर्य निर्मिति निहित होती है, तो कारीगरी में कौशल अभिप्रेत है। इसके बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम एक शिल्पकार का उदाहरण लें। कोई शिल्पकार अपनी प्रतिभा के द्वारा एक आध सुंदर मूर्ति बनाता है तो उसे हम कलाकार मानते हैं, किंतु उसी मूर्ति को सैकड़ों प्रतिकृतियां कोई निर्माण करे तो उसे हम कारीगर मूर्तिकार कहते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य यह कहने का नहीं है कि कारीगरी कम है, कारीगरी के लिए भी सौंदर्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। मौलिक शिल्पाकृति शिल्पकार का ही की बनाई होती है, और सुंदर मूर्तियों की प्रतिकृतियां बनाते बनाते कारीगर उस निर्मिति तंत्र का कौशल हासिल करता जाता है, और इसी कौशल के बल पर वह असंख्य कलाकृतियों का निर्माण किया करता है। जो बात शिल्प कला की है वही संगीत कला की भी है। कला के प्रस्तुतिकरण के दौरान कलाकार सौंदर्य निर्माण कर रहा हो तो उस प्रस्तुतिकरण को हम उत्कृष्ट कला के रूप में देखते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि कलाकार पर्याप्त रियाज, प्राप्त कौशल एवं अनुशासन के फलस्वरूप अपनी कला को उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। उसका यह प्रस्तुतिकरण श्रवणीय हो किंतु उसमें नव सौंदर्य निर्मित निहित न हो तो ऐसे प्रस्तुतिकरण को कारीगरी माना जाएगा। तबले का ही उदाहरण लें, कुछ कलाकारों का सोलो वादन कलात्मक होता है तो कुछ का केवल कौशलपूर्ण। कभी कभी केवल शास्त्र से भरा हुआ तबला वादन ही हमें सुनने को मिलता है। शास्त्रीय तबला वादन बुद्धि को सुख देता है तो कलात्मक एवं कारीगरी से युक्त तबला वादन बुद्धि के साथ मन एवं हृदय को भी सुख प्रदान करता है। एक बात निश्चित है, पृष्ठ संख्या 161, कि कला निर्मिति के लिए प्रतिभा के पारस स्पर्श की आवश्यकता होती है। तबला वादन के कुल प्रस्तुतिकरण में सौंदर्य एवं नवनिर्मिति पूर्ण कला केवल 10 से 15% तक ही हो सकती है। शेष 95 से 90% प्रस्तुतिकरण कारीगरी और शास्त्र से समन्वित होता है। कारीगरी के बिना मात्र कला आकर्षक रूप में प्रस्तुत भी नहीं की जा सकती, इसलिए कलाकार को कारीगरी में प्रावीण्य प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा वादन कौशल अनुशासनबद्ध, जागरूक एवं सातत्यपूर्ण रियाज से ही प्राप्त होता है। अतः कला के उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए रियाज निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिभाशाली और समर्थ कलाकारों के वादन में जगह जगह होने वाली सौंदर्य की अनुभूति के फलस्वरूप हम आनंदित होते हैं। सौंदर्य की यह अभिव्यक्ति तबला वादन में विविध रूपों में होती है। उदाहरण के लिए, पहला काव्यमय भाषा सौंदर्य, दूसरा घराने के अनुशासनबद्ध विचार विस्तार में निहित सौंदर्य, तीसरा खाली भरी का सौंदर्य, चौथा रचना विस्तार और सौंदर्य, पांचवा रचना सौंदर्य, छठवां निकास एवं नाद सौंदर्य, सातवां गणित सौंदर्य, आठवां सम और सौंदर्य, नौवां गति सौंदर्य, दसवां तबले से रस निर्मिति, ग्यारहवां नवनिर्मिति और सौंदर्य, बारहवां पढ़ंत का सौंदर्य। तबला वादन के इन विविध सौंदर्य स्वरूपों का अध्ययन करना तबले के विद्यार्थी के लिए नितांत आवश्यक है। इनका अगर विद्यार्थी ने अध्ययन और मनन चिंतन किया तो उसकी छटा विद्यार्थी के वादन में निःसंदेह प्रतिबिंबित होगी और धीरे धीरे उसका वादन अधिक सौंदर्यपूर्ण हो सकेगा। आगे हम उपर्युक्त सौंदर्याभिव्यक्ति के विविध रूपों की क्रमशः चर्चा करेंगे।